الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت محل سرو وزر سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لائے گا تو اس کو ایسی 10 نیکیاں ملیں گی اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس کو ویسی ہی سزا ملے گی اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی. ہماری متصل آیات کریمہ میں انسانی کردار اور مزاج کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور آخرت کے حساب اس سے متعلق جگہ جگہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے. اس آیہ کریمہ میں جو عمل اختیار کیے گئے ان کے جو نتائج ہوں گے اس پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کریم غفور الرحیم ہے. دنیا کے حساب کتاب برابری پر ہوتے ہیں, یہاں برابری ہے نہیں اور اس کی شان کریمی ہے کہ رب کائنات مخلوق پر جو عطا ہے اسے بے حد و حساب پسند فرماتا ہے. اب جب بات عمل کی آتی ہے تو دنیا کا حساب کتاب جو ہوتا ہے, باہم لین دین جو ہوتا ہے, اس میں ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے یا ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی احتیاج جو ہے وہ دور ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی دکان پر گیا ہے تو اس نے وہاں پر پیسے صرف کیے اور دکان سے اس نے اپنی ضرورت کی جنس خریدی. اب دکاندار نے جنس تو دی لیکن بدلے میں اس نے پیسے لیے. اب جو گاہک ہے اس نے پیسے تو دیے لیکن بدلے میں جنس لی. تو یہ بات اسی پہلو کو اگر ہم عبادت کے معنوں میں لے آئیں گے تو یہ سرین غلط بات ہوگی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور یہ موضوع نازک ہے اور یہ بات نازک ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم عبادات کے بدلے میں ضروریات دنیا کو رکھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ کی یاد کے ساتھ ارشاد جب فرمایا گیا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے, اب اللہ کی یاد کا مقصد یا مقصود دلوں کا قرار لے لیا جائے تو بات اور ہے, اور اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار نصیب ہو یہ بات اور ہے. اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی ادا کرتے ہیں, تسبیحات تک پڑھتے ہیں, پھر بھی ہماری زندگی میں مسائل ہیں. اسی بات کو لے لیں اور سب سے بڑی مثال عملی صورت کی, سب سے بڑی, سب سے عظیم, سب سے مقدس مثال اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے, اور سیرت پاک کے مطالعہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک امتی کی محبت ہے, جو ایک عشق ہے, جو ایک تعلق ہے, اس میں برکت نصیب ہوتی ہے, اضافہ نصیب ہوتا ہے. اپنی ان مشکلات کو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جاؤ. کوئی ایک بندہ اپنی زندگی کی مشکلات جمع کر لے اور پھر وہاں دیکھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء رحمت للعالمین قیام قیامت میں بڑی سختی بیان فرمائی گئی ہے. قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے, پھر حدیث مبارکہ میں اس کی اور باریکیاں بیان فرمائی گئی ہیں. تو حساب کتاب تو ہو लेकिन जो सख्ती है उसकी इतनी शिद्दत है। अब देखें ना, एक हिसाब किताब का खौफ है कि मैंने क्या कुछ भेजा है, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जो उस दिन की सख्ती है उससे मुतल्लिक जो उलमाए कराम बयान फरमाते हैं अहदीस की रोशनी में, फरमाते हैं मखलूक तड़प उठेगी कि जो हो हिसाब तो शुरू हो, ये इब्तदा तो हो, ये जो सख्ती है इससे तो निकले। तो हर कौम अपने अपने नबी और रसूल की खिदमत में हाजिर होगी कि आप मुकर्रबीन बारगाह इलाही हैं, अल्लाह के हुज़ूर दुआ फरमाएं कि कम अज कम हिसाब शुरू तो हो। फिर तमाम अंबिया रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के हुज़ूर दुआ फरमाएं। आपका इरशाद आली है कि फिर आप अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज होंगे जब तक अल्लाह को मंजूर, फिर इरशाद होगा, फिर आपकी दुआ की शर्फ कबूलियत होगी तो मखलूक का हिसाब शुरू होगा। अब जब हम दुनिया के मामलात में मुकाबिल सोचते हैं और उसी पहलू को लेकर इबादात के हिस्सों में आते हैं तो सोचें तो सही ना कि कितनी बारीकी है। इसलिए इस नजाकत का समझना जरूरी है, चूंकि हम अमल इख्तियार कर रहे हैं और उन अमाल पर नताइज मुरतब होंगे। और अल्लाह करीम माफ फरमाते हैं, रहम फरमाते हैं, और जब गफूर और रहीम बयान किया जाता है ना तो इसके हिसाब कोई नहीं रहते, क्योंकि अल्लाह करीम की जो रहमत है सिफ़ते बारी ताला है, जिस तरह उसकी जात लामादूद है इसी तरह सिफाते बारी ताला भी लामादूद है, तो उसका हिसाब नहीं हो सकता। मौजूद सामी ने करा, तो फिर जब हम अपनी मुश्किलात यहां की को देखेंगे फिर उसे, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि सीरत पाक से जाकर देखें तो समझ आएगी कि वो जात जिस जात पर अल्लाह करीम ने इतना एहसान फरमाया कि मखलूक के लिए न सिर्फ इस खल्क के हिस्सों में बाइश रहमत पैदा फरमाया, रोजे माशर उनकी दुआ का सदका होगा कि मखलूक की का हिसाब शुरू होगा। और शहादत बड़ी बुनियादी शय है किसी भी मुकदमे में। हर कौम में शायद होंगे, अंबिया रसूल शहादत देंगे, सब की शहादत पर जो शहादत होगी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान करीम की आयात करीमा बयान फरमाते, फिर उस हस्ती की जिंदगी का मुताला करें, उस मुबारक जिंदगी में जो सख्तियां हैं उन्हें देखें, जो तकालीफ हैं उन्हें देखें, और फिर हम अपनी इस कैफियत को देखें कि रुकू सजूद के साथ मामूलात दुनिया को जो हम वाबस्ता करते हैं, ये क्या सूरत है। बातें करना आसान है, शायद एतराज करना किसी बात करने से ज्यादा आसान है, मुतरेज हो जाना ज्यादा आसान है, क्योंकि जो सवाल होता है ये जहालत होती है। अब उसकी किस्म है कि किस तरह का सवाल है। अगर उस सवाल के साथ पीछे को नियत का खन्नास शामिल है तो फिर बहुत बुरी तरफ चली जाएगी बात। अगर शनासाई के हवाले से है तो न जानने का तो ऐलान हुआ ना, जानता हो तो सवाल ना हो। तो ये बड़ी बारीकियां होती हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि यही जो अल्फाज या गुजारशात पेश कर रहा हूं ये सब के लिए नहीं, इसकी पहली इब्तदा मैं अपनी जात से करूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे साथ भी जिंदगी की जो पेचोखाम है वो इसी तरह है जिस तरह और लोगों के साथ हैं, पसंद हो नापसंद है, सेहत बीमारी है। बल्कि यहां जहां बैठा हूं यहां की कोई न कोई ऐसी बीमारी जो ताहयात रहती है, ये तारीख तसव्वुफ से साबित हो रही है। चाहे जाए कि मैं ये कहूं कि ये सेहत क्यों नहीं है, या इबादात का जो बदला है वो दुनिया की जरूरियात की तकमील में क्यों नहीं, अल्लाह करीम ने हर शय अता फरमाई है। कोई ऐसा पहलू नहीं कि जिस पहलू को देखूं तो ये समझ ना आए कि इस काबिल नहीं है जो उसने अता फरमाया। फिर खसूसन जहां बैठा हूं, यहां बैठने में मौजूद सामीन कराम कोई न कोई जाहिरी या वजूदी तकलीफ इसे ढूंढिएगा जैसा मैं कह रहा हूं, और इस शोबे के जिम्मेदारान की जिंदगी देखिएगा, समाने देखिएगा, आपको समझ आएगी कि कोई न कोई ऐसी तकलीफ जो अमूमी बर्दाश्त नहीं हो सकती वो इस जिम्मेदारी के साथ चलती है और तायात चलती है। बहुत बड़ी बात हो तो वो बदल जाती है, जाती मैंने नहीं देखी, वल्ला आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अब अगर ये सोचूं कि इतनी मखलूक को अल्लाह अल्लाह सिखाने की जिम्मेदारी है तो इतनी तकलीफ साथ क्यों है, तो फिर मैंने अर्ज की ना कि जबान गुंग हो जाएगी। हमारे लिए हर पहलू से बड़ी बात हो, बारीक से बारीक बात, उसवे हसना बेहतरीन रहनुमाई है। और ये मेरा ख्याल नहीं है, ये मखलूक की तजवीज नहीं है। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहे। तो जब हम इन चीजों को देखेंगे तो इस सौदे से निकल आएंगे। लामा अल्लाह की याद से दिलों को करार आता है, दिल सकून में आते हैं। इसी तरह नमाज है। आज की जो जदीद साइंस है, जो तहकीक है सेहत के हवाले से, नमाज के जितने औकात और जितने रुकू सजूद कायम तशद्दुद जो अंदाज है, इंसानी सेहत के लिए इतने औकात में इतनी हरकत जो है वो इंतहाई आला है। अब अगर नमाज पढ़ते हुए ये ख्याल कर लिया जाए कि मैं तो वर्जिश कर रहा हूं, वजूद को तकवीयत दे रहा हूं, तो क्या नमाज अदा होगी? और नमाज की नियत खालिस नसीब हो तो क्या जो वजूद का खिंचाव है या वजूद की जो वर्जिश है वो रह जाएगी? तो बड़ा फर्क पड़ता। वर्जिश के लिए करोगे तो इबादत इबादत के दर्जे में नहीं रहेगी, इबादत करोगे तो जरूरत जो वजूदी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो कितना फर्क पड़ता है। तो अपनी इस सोच को परखने की और हर लम्हे जांचने की जरूरत होती है। एक तो है ना कि मैं अपनी रवश देखूं क्या सोच रहा हूं और किधर को जा रहा हूं, एक बात। दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि लम्हा लम्हा इसे देखा जाए। बंदा सबसे जो ज्यादा धोखाधड़ी का अमल करता है वो अपनी जात से करता है, क्योंकि वो जो चाहता है उसी के मुतल्लिक जवाज घटता रहता है। अपनी हर गलती को कोई न कोई जवाज दे देता है, अपनी हर ज्यादती को कोई न कोई जवाज दे देता है, हालांकि जवाज देने की जरूरत नहीं है, हर शय मौजूद है। मुताबकत रखने की जरूरत है, तहत आने की जरूरत है, जो हुक्म है उसके मुताबिक बात हो, जो हुक्म है उसके तहत बात हो। और अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि इन्नम अमरु मिनल्लाह, जो अल्लाह के लिए कोई काम करता है तो वो उसको अता फरमाते हैं, उनको वो बताएंगे कि जो अल्लाह के लिए काम करते हैं। अब क्या बताएंगे? मंजा बिल हसनात फलो अशरु अम्सालिहा, अशरु कितने गुना हो गए, अमल तो एक है तो बात दस गुना तक चली गई। फिर हदीस शरीफ में आता है कि बंदे मोमिन नियत करता है जब नेक अमल की, तो उसे एक नेकी नसीब हो जाती। हालांकि वो अमल तक ना पहुंच पाए, एक होता है ना नियत करना और फिर तकमील तक पहुंचना कि जो नियत की है उस अमल तक पहुंचा। ऐसा करम और एहसान है कि नियत की अमल न कर सका चाहे जिस वजह से भी, लेकिन उसकी वो नियत उसे नेकी के दर्जे में ले जाएगी। और इसके मुकाबिल कोई बुराई सोची या बुरी नियत आई लेकिन अमल नहीं किया तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं है ताँ कि उस पर अमल इख्तियार न करे। और जब कोई नेक अमल किया तो अल्लाह करीम फरमा रहे हैं तो जो कोई नेकी लाएगा तो उसके लिए ऐसी 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुना अजर जो है वो उसे अता फरमाया जाए। अब कौन है जो इस तरह के सौदे कर रहा, वो बात याद आती है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपना तिजारती काफिला पहुंचा और उसकी तिजारत पर इतने गुने इरशाद फरमाया तो मैं तो उसे सौदा बेचूंगा जो इतने गुने अता करेगा सौदे में देगा। कौन अल्लाह की राह में उन्होंने बांट दिया सारा माल कि मेरे अल्लाह इतना गुना अजर अता फरमाते हैं मैं तो सौदा वहां करूंगा। अब वो पहचान जो नूर ईमान से उन्हें नसीब हुए, देखें उम्मत जो होती है ये बतौर तवारस शुमार होती है, आल के किसी न किसी माने में किसी न किसी दर्जे में शुमार होती है। अब जो कुछ अता फरमाएगा, आपने गौर किया होगा अक्सर ये बात होती है कि बतौर तवारस हमें दीन इस्लाम नसीब होगा, जो नस्ल बाद नस्ल मुसलमान हो रहे हैं तो ये विरासत में हमें मिला, अबाव अजदाद से होते होते हमें विरासत में मिला। तो जो भी दीन हक इख्तियार करता है उसे एक दर्जे की विरासत का हिस्सा मुयस्सर आता है। और कितना अजीम मकाम है, कितनी अजीम जात है, वहां से हमें विरासत नसीब हुई। अब जिसकी जितनी विरासत है उसे उतनी मिलनी, बाप फौत होता है तो उसके बेटे की जो तकसीम में विरासत में हिस्सा है उसके लिए वो उसका तय होता है, जो बेटी का है वो अलग होता है, जो उसकी बेवा का होता है वो अलग होता है, तो उसी हिसाब से विरासत तकसीम होती है। अब जो हिस्सा सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को नसीब हुआ, जो हिस्सा खुलफाए राशिदीन को नसीब हुआ, जो हिस्सा ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीब हुआ, उनकी अपनी शान। अब वहां क्या हिस्सा तो है लेकिन ये नहीं है कि यहां इस करम और एहसान में रब्बे कायनात ने हम जैसे खताकारों को शामिल नहीं फरमाया अपनी हैसियत के मुताबिक। अब ये अलग बात है कि जहां महल होता है, जहां बादशाह रहता है, आप गौर कीजिएगा खुदाम भी महल में रहते हैं, पूछो ना कहां रहते हो तो वो कहते हैं बादशाह का जो फला महल है उसमें रहते हैं। अब बादशाह उस महल में मालिक की हैसियत से है, खादिम खिदमतगार की हैसियत से है, रहते तो महल में। इसी तरह जो बतौर तवारस बात हो रही है, जो शान अल्लाह की मुकर्रब हस्तियों की जिन पर उनका एहसान है उनकी अपनी शान, उन्हें अल्लाह ने अता फरमाया और उस अता के सदके अल्लाह करीम हम पर रहम फरमाए रखे कि खुदाम की हैसियत से हमें वहां जाना या वहां का हिस्सा नसीब रहे। तो ये बातें शायद अल्फाज जो है वो वाजह न कर सकते हूं इन कैफियात को, लेकिन याद रखिएगा ये बातें अधूरी नहीं रहेंगी, इनकी वजाहत इतनी होगी कि किसी को कोई किसी दर्जे का शायबा नहीं रहेगा। लेकिन जरूरत आ जाए इसको समझने की। फिर दूसरा हिस्सा फरमाया वमन जा विस्सयात फला युज्जा इल्ला मिस्ला वहुम ला युज्लमून, कि अगर कोई गलती करता है, बुराई करता है और उस बुराई का हिस्सा वो आगे अपने लिए भेज रहा है तो फरमाया तो उसको वैसी ही सजा मिलेगी, यानी जितनी ज्यादती उसने की उसका बदला उसे मिलेगा। वहुम ला युज्लमून, और उन पर ज्यादती नहीं की जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह करीम का इरशाद है कि सजा देना को उसे पसंद नहीं है, कि सजा देने का उसने पसंद है या उसका बहाना है कि ये कुछ करें तो सजा देने, गफूर माफ फरमाना उसे पसंद। फिर जो ज्यादती करता है कुरान करीम बयान फरमाता है वो खुद अपने ऊपर ज्यादती करता है। अब आग जल रही है, आग की सिफत है जलाना, उस आग जो जलाना जिसकी सिफत है उसमें हाथ डालकर क्यों नहीं कहता कोई जी अल्लाह करीम है, अल्लाह माफ फरमाने वाले हैं, अल्लाह कादर मुतलिक हैं, मेरा हाथ नहीं जलता, क्योंकि उस आग की सिफत। अब जिसकी सिफत जलाना है जब हकीकी बात उसके नाम की आती है तो वो ठंडक देती है, लेकिन जब हम दायरे दुनिया के अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक देखें तो उसमें हाथ कौन ही डालता, क्यों पता है कि ये जलाती है। तो जो जुल्म और ज्यादती बदामाली की सूरत में हम कर रहे हैं तो यहां क्यों नहीं समझ आती कि ये भी फिर जलाने का सबब होंगे। तो अर्ज की ना कि अपनी पसंद को हम जवाज मुहैया करते रहते हैं, हालां जरूरत है कि हकीकत पसंदाना रहा जाए। और अब हकीकत पसंदाना को जब हम देखेंगे या बहस करेंगे तो उसका मतलब जो फी जमाना लिया जा रहा है वो ये है कि ये अहकाम तो इतना ही सदियां हो गई हैं, वो अंदाज जिंदगी तो आज की जो जदीद जिंदगी है इसकी मुताबकत नहीं रखती, और बुनियादी इंसानी जो मिजाज है और जो जरूरत है दीन इस्लाम उसके मुताबिक है, इसलिए दीन फितरत कहा जाता है। और बुनियादी जरूरतें कभी न बदली हैं न कभी बदलेंगी। आज से सदियां पहले क्या इंसान को भूख नहीं लगती थी, तो क्या आज नहीं लगती? तब प्यास नहीं लगती थी, क्या आज प्यास नहीं लगती? तब दुख दुख नहीं था और आज दुख दुख नहीं है? तब सुख सुख नहीं था तो क्या आज सुख सुख नहीं है? जराए बदले हैं, तकमीली जराए बदले हैं। जिद्दत का मुराद, जिद्दत से मुराद ये नहीं है कि बुनियादी जो जरूरत है वो बदली है, तकमील के जराए बदले हैं। पहले अगर कोई सफर घोड़े पर करता था या ऊंट पर करता था, आज गाड़ी पर करता है या जहाज पर करता है, तो क्या मुसाफर या सफर ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? तब भी था, आज। तो जब बुनियादी जरूरियात वही हैं तो उसकी तकमील में जो असूल व जवाबत हैं वो भी वही चाहिए होंगे। तब भी किसी का घोड़ा कुछ छीन लेना अच्छाई की अलामत नहीं थी, चोरी के मानों में आता था, डकैती के मानों में आता था, जुल्म के मानों में आता था, और उस पर जो दीनी हुक्म है वही था। जो आज किसी की गाड़ी छीन लेता है या चोरी कर लेता है तो जो आज हुक्म सादिर होगा वही होगा। तो बुनियादी जरूरत भी वही है तो फिर असूल भी वही है, इसीलिए दीन इस्लाम को दीन फितरत इरशाद फरमाया गया। और जैसा कोई करेगा गलती में उसके मुताबिक पाएगा, लेकिन अगर बेहतरी नसीब हुई करना, अमल सहले नसीब हुआ तो फरमाया जा रहा है उसे 10 गुना अता फरमाया जाएगा। हम ला युज़लमून, के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अल्लाह करीम हमें माफ फरमाए, हम इस काबिल नहीं है अपना हिसाब किताब जा मांगे। एक ही बात समझ आती है कि अल्लाह करीम से अपने आमाल बद की माफी मांगी जाए। अमल साले जो उसने तौफीक अता फरमाई उसमें इतनी खामियां हैं कि मैं समझता हूं कि बजाय अमल साले के اجر اور ثواب کے دیکھنے کو ضرورت سمر کی ہے کہ ان رکوع سجود جو نصیب میں جو ان کی خامیاں اس کی بھی معافی مانگی جائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.